दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में आपका स्वागत है जयंती बहन। आशा है आप अच्छी होंगी और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो एरिक, ओम शांति। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम की पहल बहुत सही समय पर की गई है, जब संसार को भविष्य की चिंता लगी हुई है। बहुत समय से बाप दादा हमें मार्गदर्शक बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। स्वर्णिम युग का आपका क्या अनुभव है? मुझे पक्का निश्चय है कि ब्राह्मण जीवन में स्वर्णिम युग को अनुभव करने के आपको बहुत मौके मिले होंगे। बाबा ने आपको बहुत अद्भुत अनुभव करवाए होंगे। क्या हम इस बात से शुरुआत करें कि आप हमें स्वर्णिम युग के अपने व्यक्तिगत अनुभव सुनाएं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे बहुत से ट्रांस के अनुभव हुए और इसमें मैं कृष्ण को देखती थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं मालूम था कि ये कृष्ण है कौन। बाद में जब मैंने उसका वर्णन किया तो मुझे बताया गया कि जिसके हाथ में बांसुरी है वह आखिर कौन है। लेकिन उस दृश्य में बहुत सुंदरता थी, रंग थे, हल्कापन था और स्वतंत्रता का एहसास था। बहुत खुला मैदान था जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, कोई भी शर्तें नहीं लगाई गई थी और बस प्रेम ही प्रेम था। ये मेरे बचपन की स्वर्णिम युग की स्मृति है। और कभी कभी जब दादियों से दृष्टि मिलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरे आयाम में पहुंच गई हूँ और ये वही आयाम है जिसको देखकर दो शब्द याद आते हैं, प्रेम और प्रकाश। प्रत्येक वस्तु प्रकाश से पूरित है और स्वयं के प्रति व्यक्तिगत प्रेम का अनुभव तो होता ही था, परंतु सार्वभौमिक प्रेम, प्रेम केवल आपके आसपास ही नहीं है बल्कि वह आपको छूता हुआ प्रतीत होता है। यह व्यक्तिगत रूप से आप तक पहुंच रहा है और इस प्रकार प्रेम के बारे में यह बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव हुआ। वह प्रेम बहुत स्वतंत्रता से और खुलेपन से सबके साथ बांटा जाता है। ये दो बातें मेरे अनुभव में आई हैं। हम बहुत बार ये कहते हैं कि हम सत्यों की राजधानी यहाँ देखना चाहते हैं, और जब भी दादी जानकी ने यह कथन कहा है तो उनका अर्थ है संपूर्ण समन्वय से यहाँ मिलजुल कर रहना और कोई किसी को दुख नहीं देता। आपको किसी भी प्रकार से स्वयं को दूसरे से बचाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। प्रत्येक बात में बहुत प्राकृतिक और सहज भाव है और हरेक एक दूसरे से कदम मिलाकर चल रहा है, तो वहाँ संपूर्ण समन्वय की रास है। और दादी बहुत बार हमें कहती है, मैं सत्यों की राजधानी यही देखना चाहती हूँ। हरेक वस्तु में संपूर्ण अनुशासन, संपूर्ण समकालिकता और संपूर्ण समन्वय। और सत्युग के बारे में एक और समझ मिली थी।
I'd like to see the kingdom of Satyuk here, everything working in perfect order, in perfect synchronicity and perfect harmony. So that again is another insight about Satyuk.
Eric bhai, Satyuk kaisa hoga aur kaise aayega? Is bare mein bhi alag alag baatein aur samajh hai. Itne varshon mein aapne jo sakshatkar kiye hain aur samajh hasil ki hai, उस आधार पर आप किस प्रकार वर्णन करेंगे कि किस प्रकार यह सब होगा, उसमें से कितना आपको वास्तविक लगता है और कितना पूर्वालोकन की तरह है, तो आपकी समझ अनुसार भौतिक रूप से सत्युग कैसा होगा? मुझे तो बहुत उचित और तर्कसंगत लगता है। हाँ, जब आत्मा संपूर्ण पावन और दिव्य होती है और सर्व गुणों से भरपूर होती है तो वहाँ हल्कापन होता है और प्रेम का अनुभव होगा और सुंदरता का अनुभव होगा। आज भी जब कुछ भी वस्तु संपूर्ण स्वच्छ होती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर दिखती है, और सतयुग में तो निश्चित रूप से प्रकृति अपनी प्राथमिक अवस्था में होती है और इसलिए प्रत्येक वस्तु बहुत सुंदर दिखाई देती है। मानव का रूप भी जैसे प्रकाश बिखेरता हुआ होगा क्योंकि वह बहुत साफ और स्वच्छ होगा, उसमें हड्डियों और मांस का भारीपन नहीं होगा, हल्केपन से भरपूर होगा। तो जो कुछ भी मैंने देखा है, दादियों को देखा है, इस संबंध में जो भी समझ है वह यही है कि प्रत्येक वस्तु में एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। मैं और आप सब एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, हमारे बीच में जब विश्वास और पारदर्शिता होगी तो निश्चित रूप से हम समन्वय के साथ रह सकते हैं। मुझ में या आप में किसी में कोई खामियां नहीं होंगी जिसकी हमें क्षतिपूर्ति करनी पड़े, हम साथ ही प्रवाह में आएंगे। एरिक भाई, तो वहाँ स्वर्णिम युग में सेवा के लिए तो कोई मीटिंग्स नहीं होंगी ना? जयंती बहन, नहीं मुझे नहीं लगता कि, लेकिन वहाँ परिवार की मीटिंग्स जरूर होंगी, लेकिन सेवा के लिए मीटिंग्स नहीं होंगी। प्रत्येक कार्य इतना सहजतापूर्वक और कुदरती रूप से हो रहा होगा, और जब भी राज दरबार लगता है सब कुछ सहज और समन्वय से हो रहा है, तो हमें इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी पड़ती कि इस समस्या का या उस समस्या का समाधान कैसे करें। वित्तीय बजट भी नहीं बनाना पड़ता। शासन प्रणाली बहुत सहज प्रक्रिया होगी जिसमें विचारों की लेन देन होगी, कुछ भी गतिहीन और अटका हुआ नहीं होगा, बस एक प्रवाह होगा। एरिक भाई, बस भौतिक आयाम पर थोड़ा और प्रकाश डालें। आपके साक्षात्कारों से कोई विशेष तस्वीर जो आपके सामने आ रही हो, जो आपको आकर्षित लगी हो? जयंती बहन, एक विशेष तस्वीर सामने आती है जिससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। सोने के बारे में सोचे, कलयुग में सोना कितना भारी होता है, और अपनी पलकों को देखें, वे कितनी हल्की और कोमल होती हैं, और जब हल्की सी धूल पलकों पर आ जाती है तो कितना असुविधाजनक लगता है और हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं। मेरे मन में लक्ष्मी की तस्वीर आती है और उसकी आंखों की पलकों के ऊपर किनारों पर सोने की एक परत चढ़ी है। हम वह सोने के गहने पहनते हैं और उसकी पलकों के ऊपर भी मेकअप के स्थान पर सोने की किनारी लगी है। ये चमकती है लेकिन बहुत हल्की है और वहाँ टिकी रहती है। ये हमें कोई असुविधा नहीं करती या कोई चोट नहीं पहुँचाती। इससे हमें अनुमान हो सकता है कि वह धातु भी कितनी हल्की होती है और फिर भी अपनी सुंदरता को बरकरार रखती है और कोई वजन नहीं होता, और आप आंखों की सुंदरता और चमक का अनुमान लगा सकते हैं। यह संपूर्ण सुंदरता की भावना को बढ़ावा देती है। एरिक भाई, वाह, मैं विस्तार से जानना चाहता था। मुझे एहसास नहीं था कि इतना करीब से स्वर्णिम युग के रूप को जान पाएंगे। मेकअप के बारे में इतना विस्तृत वर्णन करने के लिए शुक्रिया। मुझे आशा है भाई भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। जयंती बहन, हाँ हाँ जरूर, मुझे पक्का विश्वास है। कुछ समतुल्य भी जरूर होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि आप स्त्री रूप में होंगे या पुरुष रूप में। एरिक भाई, दृष्टि से सृष्टि कार्यक्रम में हम साक्षात्कारों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से मेरे जैसे लोगों को हमेशा वे 3D अनुभव नहीं हुआ है। स्वर्णिम युग के पोस्ट कार्डों के अभाव में हम कभी कभी उन तस्वीरों में चेहरों को देखते हैं जिसमें ऐसा लगता है उन्हें शताब्दियों से एक ही कलाकार ने चित्रित किया है। आप स्वर्णिम युग के रूप को किस प्रकार की वास्तविकता में देखते हो? सत्युग की जो एक पक्षीय तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो उससे वह सत्ययुग कितना अलग होगा। स्वर्णिम युग को आता हुआ आप किस प्रकार देखते हो, वह साकार या कंक्रीट होता हुआ किस प्रकार देखते हैं? जयंती बहन, यह बहुत रोचक है कि आपने कंक्रीट शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ कंक्रीट नहीं होता, वहाँ सब कुछ प्रकाश से परिपूर्ण होगा। सत्ययुग में जो कुछ भी मानव जीवन में होता है वह पवित्रता की उच्चतम पराकाष्ठा पर होता है। उदाहरण के लिए अभिभावक और बच्चे, बाप और बच्चे। आज के संसार में भी कुछ मामलों में आप देखते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में संपूर्ण प्रेम होता है और बच्चा बहुत प्रेम से प्रतिक्रिया देता है। अगर इस दौर में भी अभिभावक और बच्चों के बीच के संबंध की सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है, उसको कई गुना बढ़ाकर इजाफा करके देखें और आपको स्वर्णिम युग की तस्वीर दिखाई देगी। चाहे कोई बालक राजा के घर में जन्म ले या किसी सादे घर में जन्म ले, लेकिन इस संसार में आगमन पर उसका अभिवादन और प्रेम बहुत वास्तविक होगा। और यह मुझे पसंद है जब बाबा कहते हैं कि यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर को बच्चे को रुलाने की कोशिश में शरीर के निचले हिस्से को थपकी देनी पड़ती है ताकि उसके फेफड़े सही काम करें। जीवन की एक ऐसी शुरुआत है जहाँ आपके नीचे के हिस्से को थप्पड़ लगाया जा रहा है। और सत्ययुग में कितना अलग है, माँ और बच्चे दोनों के लिए अति सहज प्रवेशता। संसार में आपका आगमन एक बहुत सुंदर मुस्कान लिए, और मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा घंटों और दिनों तक अपनी आंखें बंद करके रखेगा, लेकिन बच्चा आंखें खोलेगा, माँ बाप की ओर देखेगा और उनकी आंखों में प्रेम को देखकर प्रतिक्रिया भी देगा। और मुझे पूरा निश्चय है कि छोटे बच्चे बड़ों से अधिक सोएंगे तो, लेकिन वह आज की तरह भारी स्थिति नहीं होगी। और जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने दोस्तों के साथ बहुत प्रेम का संबंध होगा, हंसी मजाक मौज मस्ती ये सब बचपन के हिस्से होंगे। गंभीरता तो नहीं होगी, बहुत सी मौज मस्ती, चारों ओर घूमना फिरना, इस बारे में कोई चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा। बच्चे आजादी से बड़े बड़े उद्यानों में घूमेंगे, खेलेंगे, खेलने के लिए बहुत से साधन होंगे, पुचकारने और दुलारने के लिए जानवर भी होंगे, उनके साथ रहकर उनके संग का आनंद लेंगे।
Just be with them and enjoy their company too.
खेल खेल में सीखना होगा, बहुत अधिक इतिहास नहीं सीखेंगे, हाँ भूगोल हम सीखेंगे, भूगोल कला और नृत्य हम अवश्य सीखेंगे, हम अंक गणित सीखेंगे लेकिन रोचक ढंग से, बहुत सहज तरीके से हम भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे ताकि हम सीख सके कि सुचारू रूप से कार्य कैसे करना है। मुझे संदेह है कि हम वहाँ भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र सीखेंगे, क्योंकि वह थोड़ा कठिन कार्य है। मैं जानती हूँ कि सतयुग में सबसे आधुनिक उपकरण होंगे, वहाँ आपके अपने विमान होंगे। इसके दो पहलू हैं, जो लोग इसे हमारे उपयोग के लिए इन अद्भुत उपकरणों को बनाएंगे और सारा अधिक परिश्रम का कार्य करेंगे और हम इनका आनंद उठाएंगे। हाँ, तकनीक होगी और बहुत जटिल भी होगी, लेकिन हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे लिए तो उस उपकरण का आनंद भोगना ही होगा। इसलिए सतयुग में हर वस्तु फुल प्रूफ होगी। मुझे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि ब्रेक फेल हो जाएंगे या इसी प्रकार का कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कौन वैज्ञानिक है वैसे ये सब करेगा, लेकिन वे भी अपने जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। वह हर चीज पहले से ही तैयार मिलेगी, बस मुझे उसका आनंद लेना है। और हम काम पर भी जाएंगे, वहाँ अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे, कुछ काम करने के होंगे। जिंदगी चलती रहेगी लेकिन अपनी सुंदर और नैसर्गिक अवस्था में, कुछ भी कृत्रिम दिखावटी नहीं होगा जो हमें या दूसरों को हानि पहुंचाए।
But there will be jobs there and there will be things to do. And so life will carry on, but in its most beautiful and natural way. Nothing that's artificial, nothing that's pretense, nothing that's going to cause any trouble for another or for the self.
जब हम आपको सुन रहे हैं और बाबा के शब्दों को सुनते हैं कि किस प्रकार बाबा विवरण देते हैं, जब इसको आज इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं उससे तुलना करें तो ये सच में एक पहेली जैसा लगता है। हमें सतयुग में विश्वास है, जिस प्रकार आपने विस्तार से बताया है ये वास्तविकता में होने वाला है। हमें अपने अंतर्मन में किस बात को समाना है कि जिससे हम उस नए संसार के प्रोत्साहक परिवर्तक बने, हमारी स्मृति में क्या हो जिससे हम उस स्वर्णिम युग का निर्माण कर सके। और सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आपके विचार से इस संसार से उस संसार में हमारी प्रवेशता कैसे होगी। बहुत समय पहले मुझे याद है आपने कहा था कि यह सब 24 घंटे के भीतर नहीं होगा, परिवर्तन की एक प्रक्रिया होगी। क्या आप इन दो पहलुओं का सविस्तार वर्णन करेंगे? जयंती बहन, पहले तो स्वयं से ही सवाल करना होगा। जब मैं अपनी श्रेष्ठतम स्थिति की स्मृति रखती हूँ, वह स्थिति जब जीवन में सभी गुण निरंतर प्रत्यक्ष होते रहते हैं, मैं उस दृश्य को सामने रखूं और अभी संगम युग पर उसकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करूं, ताकि अभी गौरव, रॉयल्टी और सच्चाई की चमक आरंभ हो जाए। और जब हम खुशी, आनंद जैसे सुंदर गुणों को अभिव्यक्त करने के अधिक करीब होते हैं, कुछ भी इन्हें प्रभावित नहीं कर सकता, ये निरंतर रहते हैं। और जो भी मेरे क्षितिज में आता है उसके लिए अथाह प्रेम है, भेदभाव का कोई सवाल नहीं, ये भी नहीं कि कोई संबंध किसी दूसरे संबंध से अधिक प्रिय हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य जो मेरे जीवन में आता है उससे जुड़ जाते हैं और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ कि सोने के महल वास्तविक बन जाएंगे, मैं अपनी उच्चतम अवस्था के बारे में सोचती हूँ। मेरा वह स्वरूप मेरे सामने है और उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ना है, ताकि अभी और भविष्य के बीच जो अंतर है वह मिट जाए। तब अब और भविष्य एक हो जाएगा और ये आत्मा की संपूर्णता की वास्तविकता है, यही मुख्य बात है। लेकिन मैं दूसरों को भी इसी प्रकार देखना चाहूंगी, ताकि मैं उनको उनके वर्तमान स्वरूप के आधार पर नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं उन्हें उनके संपूर्ण स्वरूप में देख रही हूँ। इसी तरह से बाबा हमें देखते हैं। जब हम बाबा के सामने होते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा लाइट का ताज देख रहे हैं, बाबा हमें भविष्य के देवता के रूप में देखते हैं, बाबा हमारे सबसे उच्चतम स्वरूप को देखते हैं, उससे कम कुछ नहीं बाबा देखते हैं, ताकि हमें उच्च महसूस हो और हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। लेकिन अब सवाल है, मैं स्वयं अपने स्वरूप को देखूं और मैं वही स्वरूप दूसरों का भी देखूं, यह संपूर्णता के प्रकंपन चारों ओर फैल जाएंगे और वह लहर बहुतों को प्रभावित करेगी। इसलिए दृष्टि से सृष्टि मेरे लिए स्व परिवर्तन के बारे में है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि प्रकृति अपनी सबसे सुंदर अवस्था में होगी, क्योंकि वह पावन, स्वच्छ और सत्व प्रधान है। निसंदेह यह परिणाम होगा जो दिखाई देगा, वह अपनी पवित्रता के प्रथम चरण में होगी। और परिवर्तन के दौर के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि सब प्रकार की हिंसा में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, प्रकृति की हिंसा, मनुष्यों की हिंसा, और आने वाले समय में ऐसी बड़ी हिंसा होगी जो आत्माओं को शरीर से मुक्त कर देगी और अधिकतर आत्माएं घर को चली जाएंगी। और भारत भूमि पर बहुत अधिक जनसंख्या है और बहुत संख्या में आत्माएं घर की ओर उड़ेंगी, लेकिन उस भूमि खंड पर जो आत्माएं बचेंगी वे होंगी जिन्हें बाबा ने एडवांस पार्टी की आत्माएं कहाँ है, और पिछले कल्प से भी कुछ आत्माएं होंगी, और यह मिक्सचर जो बचेगा उसमें से पिछले कल्प की आत्माएं चली जाएंगी, और एडवांस पार्टी की आत्माएं जो आई हैं उनमें पवित्रता की शक्ति से प्रजनन करने की शक्ति होगी, और नई पीढ़ी और देवताओं की पीढ़ी स्वर्णिम युग में जन्म लेगी। और तब तक प्रकृति ने अपना सफाई करने का कार्य कर दिया होगा और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। मुझे इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि यह सब कितना समय चलेगा, लेकिन तुलनात्मक देखें तो यह बहुत शीघ्रता से होगा। और मैं शायद पूरी तरह गलत भी हूँ, क्योंकि बाबा ने अभी तक उस परिवर्तन के दौर को इतने विस्तार से नहीं बताया है। बाबा ने तो इतना ही कहा है, स्वयं को तैयार करो, और जब आप तैयार हो जाएंगे तो हम उस संसार को प्रकट होता हुआ देखेंगे। आप जब देखेंगे तब समझेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन निसंदेह एडवांस पार्टी की आत्माओं में वे सूचना नहीं होगी, वे ज्ञान के विस्तार को नहीं जानती होंगी, वे अपने साथ ज्ञान का फल या परिणाम लिए हुए हैं। इसका अर्थ है उनमें अनासक्ति होगी, उनमें पवित्रता की शक्ति होगी, योग की शक्ति होगी, ताकि वे पहली पीढ़ी के अर्थात वे देवात्माएं जो घर जाकर जल्दी से वापस आएंगी उनके माता पिता बन सके। उनमें ज्ञान नहीं होगा क्योंकि इस समय भी उनमें ज्ञान नहीं है। यह बात नहीं है कि ब्राह्मणों के पास ज्ञान है और वे अगली पीढ़ी को प्रदान कर देंगे, वे जब तक जा चुके होंगे। दूसरी अज्ञानी आत्माएं भी तब तक घर के लिए प्रस्थान कर चुकी होंगी। एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म ले चुकी होंगी और वे उनमें ज्ञान के संस्कार होंगे, जैसे प्रेम, अनासक्ति, संपूर्ण संतुलन और समन्वय, लेकिन उनमें ज्ञान की कोई सूचना नहीं होगी और फिर से आत्मा में मर्ज हो चुका होगा और भगवान फिर से शांत हो चुका होगा, क्योंकि उनकी परमधाम जाने की वानप्रस्थ अवस्था होगी। और हम सत्युग का आरंभ उस मासूमियत से करेंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि इतना सदमे से भरा अंत समय था, और नई शुरुआत में हम सुंदरता देखेंगे। हम तिथियों की गिनती नहीं करेंगे कि आज यह एक तारीख है, लेकिन बस यह जागरूकता रहेगी कि कुछ नया आरंभ हुआ है।
But they won't be able to have knowledge as such because they don't have knowledge clearly at this moment. So it's not Brahmins who are carrying knowledge that can be passed on to the next generation. They've gone by then. The other non-Jnani souls have also left to go home, and the advanced party souls are born. Again, they carry the sanskars of knowledge, of love and detachment and perfect balance and harmony, but they don't carry information. And so knowledge has again become merged within the soul, and God has again become silent. There's a state of retirement in Paramdham. And so we begin the golden age with that innocence, not even knowing that there has been such a traumatic end point and a new beginning. We'll see the beauty and we won't be counting that it's date number one, but it'll just be an awareness that there's something that's a fresh beginning here.
Eric bhai, wah, mujhe lagta hai hum tayar hain. Sister Jayanti, aap jab chahe hum chalne ke liye tayar hain swarnim yug mein. Jayanti behan, mujhe bhi nahi lagta कि उस संपूर्ण पवित्रता की अवस्था में पहुंचने के लिए और सुंदरता की अवस्था में पहुंचने के लिए जितना पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए उतना मैंने किया है। एरिक भाई, ठीक है, हम स्वयं को कुछ और दिन दे देते हैं। फिर स्वर्णिम युग में कोई पत्रकार नहीं होंगे जो आपसे इतने सवाल करे। सैकड़ों और भी सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन वास्तविकता को देखते हुए, इस चर्चा को यही समाप्त करते हुए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से हमें स्वर्णिम युग का अनुभव कराएं।
Sure.
शांति से बैठे हुए मैं अपने समक्ष बाबा को देखती हूँ और भगवान से जो प्रकाश आ रहा है वह शरीर के और भौतिक बंधनों से मुक्त कर रहा है और मैं अपने घर की ओर उठती हूँ जो प्रकाश की दुनिया है जहाँ अनंतता है, पवित्रता है, संपूर्ण शांति है। यहाँ मेरे घर में अब एक विचार उत्पन्न होता है और जैसे ही विचार उत्पन्न होता है ये मुझे अपने घर से निकलने के लिए प्रेरित करता है। अपने विचार शक्ति से मुझे स्वर्णिम युग का अनुभव करना है। जैसे ही मैं धरती की ओर बढ़ती हूँ मैं धरती की सुंदरता को देखती हूँ। प्रकृति ताजी, अनछुई, हरी भरी, बहुलता और प्रचुरता में है। पानी अपनी पावनता और स्वच्छता से चमक रहा है और मैं धरती पर आ जाती हूँ। कुछ समय बाद मैं एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट होती हूँ और मेरे आसपास प्रेम और प्रकाश छाया हुआ है। मैं अपने माँ बाप की आंखों में देखती हूँ, उनकी आंखें मेरा स्वागत कर रही हैं। प्रेम के प्रकाश में मैं देखती हूँ कि मेरे माता पिता कितने प्रेम से एक दूसरे को देख रहे हैं। यह परस्पर प्रेम है, यह प्रेम संपूर्णतया शर्त रहित है, मुझे स्वीकार करने वाला है, एक दूसरे को स्वीकार करने वाला है। मेरे माता पिता मुझे बगीचे में लेकर जाते हैं और मैं तितलियों और पक्षियों को नृत्य करता हुआ देखती हूँ। ऐसा लगता है वे संसार में मेरा स्वागत करने सिर्फ मेरे लिए यह प्रदर्शन करने के इंतजार में थे। मैं बच्चों को खेलता हुआ देखती हूँ, उनकी हंसी जैसे बजती हुई घंटियों जैसी है, एक गायन की तरह है। मेरे माता पिता को कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनके विचार समझ सकती हूँ और वे मेरे हमें बोलते हैं और जब वे बोलते हैं तो जैसे संगीत की धुन है। मैं ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ मेरे चारों ओर सुंदर बत्तियाँ लगी हैं। कुछ ही लोग मेरे आसपास हैं, लेकिन सुंदर मुस्कान लिए और मेरी देखभाल करने के लिए सदा तैयार। सत्यता का संसार प्रत्येक कण से सत्यता झलक रही है, प्रत्येक कोशिका से सत्यता चमक रही है। सत्यता जो कि सत्युग का आधार था, यही संसार हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इसी संसार के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं और जिस सत्यता से मैं आज अपना जीवन जीती हूँ वही गारंटी करेगा कि मैं सत्यता के युग में प्रवेश करूँ। शांति।
Yes, they do speak. And when they speak, it's the sound of music. I'm in a place in which there seems to be beautiful light all around me. People around, just a few, with great smiles, waiting to care for me. A world of truth, truth shining through every particle, truth shining through every cell, truth which is the foundation of Satyug, the age of truth. This is the world that's waiting for us. This is the world that Baba is preparing me for. And the truth with which I live my life today is the guarantee with which I move towards that age of truth. ओम शांति।
एरिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जयंती। ये कुछ पल आपके साथ बिताना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे निश्चय है जो लोग सुन रहे हैं वे ऐसा महसूस करेंगे कि एक स्वप्नदर्शी कलाकार बड़ी कुशलता से सत्योग की प्रत्येक वस्तु की पेंटिंग बना रहा हो। फिर से आपका शुक्रिया हमें भविष्य को स्पष्ट देखने में मदद करने के लिए। शुक्रिया एरिक, बहुत अच्छे सवाल थे। अब बस अपने भीतर ही कुछ कदम उठाने होंगे उस संसार को वास्तविकता में लाने के लिए। ओम शांति।